नमस्कार भारत, 12 सितंबर बुधवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अमेरिका में चक्रवाती तूफान फ्लोरेंस का खतरा बढ़ा, राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी आपातकाल का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, एनआरसी से नहीं हटेंगे पीछे।
हमने फिर निर्णय दिया है एनआरसी में से भारतीय जनता पार्टी वापिस नहीं जाएगी और चुन चुन कर सबको वो सूची में डालकर इंगित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
केरल की नन से कथित बलात्कार मामले के अभियुक्त जालंधर के बिशप ने खुद को बताया निर्दोष, वहीं नन ने वेटिकन से मांगा न्याय। और सुनाएंगे उत्तर प्रदेश के उस लड़के का दर्द जिसकी जान के पीछे पड़े हैं अंधविश्वासी लोग। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जूइस इनेसियो लूला दा सिल्वा ने अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से अपना नाम वापस ले लिया है। अब उनकी जगह उन्हीं के एक साथी फर्नांडो हद्दाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होंगे। वर्कर्स पार्टी के नेता ग्लेसी हॉफमैन ने उसी पुलिस मुख्यालय के बाहर से इस बात की घोषणा की जहां 72 वर्षीय लूला भ्रष्टाचार के आरोप में 12 साल की सजा काट रहे हैं। वैसे पिछले हफ्ते चुनावी अदालत ने उनकी भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया था और उन्हें नाम वापस लेने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री कारमेन मोंटो ने अपनी मास्टर्स डिग्री से जुड़े धांधली के आरोपों के चलते पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि मोंटो ने मीडिया की उन सारी रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें उनकी डिग्री को लेकर अनियमितता की बात कही जा रही है। उनकी मास्टर्स की डिग्री मैड्रिड की एक यूनिवर्सिटी से है। पेड्रो सांचेस के जून में प्रधानमंत्री बनने के बाद से वो दूसरी मंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। जिम्बाब्वे की सरकार ने हैजा की वजह से हुई 20 लोगों की मौत के बाद राजधानी हरारे में आपातकाल की घोषणा कर दी है। 2000 से ज़्यादा लोग हैजा से संक्रमित हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि हैजा का प्रकोप सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है, इसके बाहर भी इसका असर फैल चुका है। सरकारी प्रवक्ता मिशेल चिडेम का कहना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने उन दोनों ही नलकूपों को बंद कर दिया है जो इस बीमारी के फैलने की सबसे बड़ी वजह थे। अब कोई उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी यहाँ से पानी नहीं ले रहा है। ये इलाका बहुत घनी आबादी वाला है जिसे हम मध्यम आय वर्ग और कम आय वर्ग वाले लोगों में बांट सकते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सभी पक्षों से आग्रह किया है कि वो सीरिया के उत्तरी पश्चिमी शहर इदलिब के लिए युद्ध की स्थिति से बचें। बीती रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गुटेरेश ने कहा कि विद्रोही प्रांत पर सीरियाई सरकार के हमले के परिणाम बहुत ही विनाशकारी होंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। गुटेरेश ने कहा,
सो मच इज एट स्टेक, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू अवॉइड अ फुल स्केल बैटल इन इदलिब।
बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इदलिब में युद्ध ना हो, इसे सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। मैं सभी पार्टियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ही गुजारिश करना चाहूंगा कि वे लोगों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सोचें। ये थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। कैटालोनिया की आज़ादी के समर्थक बार्सिलोना में कैटालोनिया के नेशनल डे को मनाने के लिए जुटे हुए हैं। लगभग एक साल पहले कैटालोनिया के नेताओं ने स्पेन से अलग होने का एक तरफा ऐलान कर दिया था। इसके बाद से ये पहला मौका है जब इस तरह के किसी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। चक्रवात फ्लोरेंस के खतरे के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तटीय इलाकों में रहने वाले 10 लाख से अधिक लोगों को अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया गया है। उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना, मैरीलैंड और वॉशिंगटन डीसी में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि फ्लोरेंस तूफान शुक्रवार को दस्तक दे रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। अमेरिका के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान फ्लोरेंस से भारी तबाही मचने की आशंका को देखते हुए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पूर्वी तट को पूरी तरह से खाली करने का अभियान पहले से ही चल रहा है। अमरीका के मायामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर के केन ग्राहम ने इस चक्रवात की जो इसकी ताकत के बारे में बताया।
It's a serious situation. We want to make sure that everybody's covered with the latest information. So storm surge, heavy rain.
केन ग्राहम बता रहे हैं कि हालात गंभीर हैं और हम चाहते हैं कि हर किसी तक सही सूचना पहुंचे। तूफान, भारी बारिश और हवाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। बारिश के कारण जमीन पानी से भर जाएगी, पेड़ गिर सकते हैं और बिजली भी गुल हो सकती है। हर किसी को इन हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ये थे मायामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर के केन ग्राहम, जो बता रहे थे कि ये चक्रवात कितना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। करीब 10 लाख लोगों को यहां से निकाला जाना है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मैंने कुछ ही देर पहले वॉशिंगटन में मौजूद बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी से बात की और पूछा कि अभी किस तरह के हालात हैं और किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि ये जो आंधी तूफान आने वाला है ये 3 दहाइयों का बदतरीन आंधी तूफान है और अभी तक जो है ये नॉर्थ कैरोलिना में पहुंच गया है और 1 मिलियन लोगों को कहा गया है कि वो अपने घर छोड़ दें क्योंकि तबाही का अंदेशा जो है वो काफी बड़े पैमाने पर है और 1 मिलियन लोग जो है वो अपना घर छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ अपनी सप्लायर्स जो है, खाना हो गया या इसके अलावा फ्यूल जो हो गए, वो लोगों ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। और जिन जगहों को थ्रेट है उसमें वर्जीनिया आता है, मैरीलैंड है, वॉशिंगटन डीसी है, नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना है, जहाँ सब स्टेट्स में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। और जहाँ तक आपने इंतजाम की बात की तो उसमें जो है प्रेजिडेंट ट्रंप ने भी आज इस बारे में बात की।
They haven't seen anything like what's coming at us in 25-30 years. I've spoken with the governors of South Carolina, North Carolina and Virginia.
उन्होंने ये कहा है कि जो फेडरल फंड हैं वो रिलीज कर दिए हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके, लोगों को रीहोम किया जा सके, उनको किसी ना किसी तरह की जगह प्रोवाइड की जा सके। और साथ ही साथ जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो है थर्सडे तक, यानी कि 2 दिन बाद जो है ये मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और इसलिए लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो अपने घर छोड़ें और सेफ महफूज मकामात पर पहुंचे। जैसा कि मैंने बात की कि 3 दहाइयों का बदतरीन इसको हरिकेन कहा जा रहा है। 3 दहाई पहले जब नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में इस तरह का आंधी तूफान आया था तो उसमें हमें ये पता है कि $7 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा था, 49 लोग जो थे वो मारे गए थे। और इस दफा इन अमवात से बचने के लिए कोशिश की जा रही है कि लोगों को पहले ही वार्न कर दिया जाए कि वो उन इलाकों को जहाँ पर ये आंधी तूफान शिद्दत इख्तियार करेगा उसको छोड़ जाएं।
कैरोलिना की बात करें तो वहां से तो लोगों को हटाया जा रहा है, उनको सेफ जगहों पे ले जाया जा रहा है। क्या वॉशिंगटन में भी इस तरह इतना ज्यादा खतरा बताया जा रहा है कि वहां से लोगों को इधर उधर ले जाना पड़े?
जी अभी इमरजेंसी तो डिक्लेयर कर दी गई है लेकिन वॉशिंगटन तक क्योंकि ये आंधी तूफान अभी पहुंचा नहीं है और कहा यह जा रहा है कि शायद अगले हफ्ते तक जो है यहाँ पर भी फ्लडिंग होगी, सैलाब आएगा, लेकिन बज़ाहिर अभी जो है लोगों को इवैक्यूएशन के अहकामात या हुक्म जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही ये ट्रैवल करेगा हरिकेन, साथ ही साथ जो है एडवाइजरी रिलीज की जाएगी कि किस तरह से इससे निपटा जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि वर्जीनिया, मैरीलैंड ये सारे वो इलाके हैं वॉशिंगटन डीसी समेत जो कि इसकी जद में आ सकते हैं, तो वक्त के साथ साथ इसको जो है उसकी नौयत को देखते हुए, प्रिडिक्शंस को देखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं।
बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी बता रही थी कि वक्त रहते किस तरह से जानमाल का नुकसान कम हो इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं भारत का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के दौरे पर थे। वहां एक कार्यक्रम में उन्होंने एनआरसी का जिक्र किया और कहा कि चुन चुनकर देश में मौजूद घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के महासचिव राम माधव भी एनआरसी को देश के बाकी हिस्सों में लागू करने की बात कह चुके हैं। क्या आगामी चुनावों में बीजेपी एनआरसी को चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है, और अगर ऐसा किया जाता है तो उससे उसे कितना फायदा मिलेगा, इसी पर सुनिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की रिपोर्ट।
सिटीजन रजिस्टर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और प्राथमिक सूची बनी है, उसमें 40 लाख लोग संदिग्ध पाए गए हैं। 40 लाख लोग, आप कल्पना कर सकते हो।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जब ये कहा तो वहां बैठे लोग तालियां बजाने लगे। अमित शाह असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी के संबंध में यह बात बोल रहे थे। असम में 30 जुलाई को एनआरसी के तहत पहली सूची जारी की गई थी। इस सूची में 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम मौजूद नहीं थे। इन लोगों की नागरिकता पर सवालिया निशान खड़े हो गए। अमित शाह से पहले दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि देश के बाकी हिस्सों में भी एनआरसी लागू की जानी चाहिए। इसी कार्यक्रम में बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कहा कि जिन लोगों का नाम असम में जारी होने वाली एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं होगा उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। कहा जा सकता है कि बीजेपी आने वाले चुनावों में एनआरसी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर बीजेपी एनआरसी के तहत वोट पाने की उम्मीद कर रही है। इसके जवाब में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं,
लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भाजपा को लगता है ये ऐसा मुद्दा है जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, उसमें एक धार्मिक फुट है, लेकिन वो धर्म की बात उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक जो है इमोशनल इशू इसको बनाया जा सकता है। इसलिए आप देखिए एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू की जानी चाहिए और जो भी बाहरी हैं उनको आइडेंटिफाई करके भेजना चाहिए।
एक तरफ जहां बीजेपी एनआरसी के जरिए वोट प्राप्त करने की कोशिश करती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ असम में उन लोगों को अपनी नागरिकता की चिंता सता रही है जिनका नाम इस सूची से नदारद है। असम में एनआरसी का कितना प्रभाव रहा और उत्तर पूर्वी राज्यों में बीजेपी को इसका फायदा होगा या नुकसान, इस बारे में असम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक पूर्वोदय के संपादक रवि शंकर रवि क्या कहते हैं, उन्हें सुनिए।
बात यह है कि उन जिलों में जहां पर यह माना जाता था कि बांग्लादेश से आकर बसे अवैध नागरिकों की संख्या बहुत है, वहां पर बहुत कम 4% 5% जो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था उनके नाम नहीं है। लेकिन जहां पर भारतीय लोग ज्यादा हैं जैसे गुवाहाटी मेट्रो सिटी, यहां पर 16% 17% तक नाम कटे हैं। तो इसी से पता चलता है कि एनआरसी जो अपने मूल मकसद में था वो अभी तक सफल नहीं हो पाया है।
बीजेपी को आगामी चुनावों में एनआरसी का फायदा मिलेगा या नहीं यह अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अलग अलग मंचों से बाहरी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात रखकर बीजेपी नेता इसे चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह बात अमित शाह के इसी कार्यक्रम में दिए गए इस वक्तव्य के जरिए और ज्यादा साफ हो जाती है।
वहां से आतंकवादी इनके साथ घुसते हैं, भारत की सुरक्षा में छिद्र नहीं करते हैं क्या? कई सारे बम धमाके में वो संदिग्ध पाए गए, इसकी किसी की जिम्मेदारी है या नहीं? सरहदों को खुला छोड़ देना है आपकी वोट बैंक के लिए? हमने फर्म निर्णय दिया है एनआरसी में से भारतीय जनता पार्टी वापिस नहीं जाएगी और चुन चुन कर सबको वो सूची में डालकर उसको इंगित करने का काम भारतीय जनता पार्टी।
नवीन नेगी, बीबीसी दिल्ली।
केरल के कोट्टायम जिले में नन के साथ कथित बलात्कार के मामले में जालंधर के बिशप की गिरफ्तारी न होने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में कल अभियुक्त बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने बीबीसी के सामने अपना पक्ष रखा और खुद को बेकसूर बताते हुए नन पर कुछ आरोप लगाए। इसी बीच शिकायत करने वाली नन ने भारत में पोप के प्रतिनिधि को चिट्ठी लिखकर न्याय मांगा है। सुनिए पूरी रिपोर्ट इमरान कुरैशी से।
केरला में एक नन द्वारा एक बिशप पर यौन शोषण का इल्जाम लगाने के मामले ने कल एक नया मोड़ ले लिया। नन ने पिछले जून में पुलिस में शिकायत दर्ज की कि जलंधर डायसिस के बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने 2014 और 2016 के बीच उनका यौन शोषण किया था। इसी विषय पर केरला हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं किया। अभी तक बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने इस मामले पर किसी से भी बात नहीं की थी, मगर कल शाम को बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने बीबीसी पंजाबी के अरविंद छाबरा से बात की। उन्होंने कहा,
इट इज अ लाई, इट इज अ कंकॉक्टेड स्टोरी टू कवर अप मेनी थिंग्स, सो आई डिनाई दीज एलिगेशंस
यह सरासर झूठ है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो बहुत चीजों को छुपाने के लिए गढ़ी गई है। हम इन इल्जामों को खारिज करते हैं और हमें भरोसा है कि किसी दिन सच बाहर आएगा। हमारे पास एक ही रास्ता है कि यह मामला खत्म होने के बाद हम कोर्ट में उनके खिलाफ मनहानी का मुकदमा चलाएं। दरअसल उनके खिलाफ हमने जांच के आदेश दिए थे जिसकी वजह से वो इल्जाम लगा रही हैं। हमारे से एक महिला ने संपर्क किया और कहा कि ये नन उसके पति के साथ गलत रिश्तों की वजह से उनके परिवार को तोड़ रही है। ये थे बिशप फ्रैंको मुलाकात के शब्द। पिछले कुछ दिनों से कोची में सिस्टर्स हर रोज कुछ घंटों तक धरने पर बैठ रही हैं। उनकी मांग है कि बिशप फ्रैंको मुलाकल को फौरन गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारी सिस्टर अनुपमा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रही हैं। सिस्टर अनुपमा बिशप फ्रैंको मुलाकल के जवाब में एक सवाल पूछती हैं। उन्होंने कहा अगर वो परिवार टूट गया है तो पति पत्नी अभी साथ में कैसे हैं? ये हमारा सवाल है। दरअसल उस महिला ने ही नंद के पास आकर खुद कहा था कि मैंने जो भी उस चिट्ठी में बिशप को लिखा था वो सरासर झूठा था। उसके बाद वो मामला बंद हो गया था, लेकिन वो लगातार इस विषय को उठाते आए हैं। वो एक कहानी बना रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिशप ने खुद उस महिला और उनके पति को बुलवाकर वो चिट्ठी लिखवाई थी। ये थे सिस्टर अनुपमा के शब्द। इस बीच नन ने दिल्ली में पोप के राजदूत मोस्ट रेवरेंड गैम बतिस्ता दी क्वाद्रो को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें वो अपनी कहानी फिर से दोहरा रही हैं। ये पोप के प्रतिनिधियों को चौथी शिकायत है जिसमें चर्च के अंदर चल रही गतिविधियों के बारे में विस्तार में लिखा गया है। ये नन आज तक किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन उन्होंने एक गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है, हमें लगता है कि कैथोलिक चर्च सिर्फ पादरियों और बिशप्स की चिंता करता है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कैनन कानून में सिस्टर्स और महिलाओं के लिए कोई न्याय है या नहीं है। ये थे नन के शब्द। बहरहाल कोची में सिस्टरों के प्रदर्शन कल भी जारी रहे। दिलचस्प बात ये थी कि मुस्लिम महिला संस्थाओं के सदस्यों ने भी ईसाई महिलाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन में भाग लिया, लेकिन हर किसी की आंख हाईकोर्ट पर होगी जहां कल वो याचिका आने वाली है जिसमें मांग ये की गई है कि बिशप फ्रैंको मुलाकल को फौरन गिरफ्तार किया जाए। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक गरीब परिवार को अपने नाबालिग बालक की रात दिन सुरक्षा इसलिए करनी पड़ रही है ताकि उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। इस बच्चे के हाथों और पैरों में 6-6 उंगलियां हैं और इसी वजह से कुछ कथित अंधविश्वासी लोगों से उसकी जान को खतरा पैदा हो गया है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के माँ बाप को उसकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं समीरात्मज मिश्र।
बाराबंकी जिले के रामनगर इलाके के रहने वाले एक गरीब राजगीर के 15 वर्षीय बेटे के दोनों हाथों और दोनों पैरों में 6-6 उंगलियां हैं, यानी उसके कुल 24 उंगलियां हैं। लोग बालक की इस स्थिति को देखकर हैरान रह जाते हैं, खुद परिवार वाले भी। 24 उंगलियां असामान्य स्थिति भले हैं, लेकिन इन उंगलियों की वजह से बच्चे को कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन पिछले कुछ समय से इन्हीं 24 उंगलियों की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ी हुई है। बच्चे के कुछ रिश्तेदार ही किसी तांत्रिक के कहने पर कथित तौर पर उसकी बलि देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाए। पीड़ित लड़के ने बताया कि कुछ लोग एक दिन उसे पकड़ कर ले भी गए थे।
वो आए थे, हमको ले गए थे और घुमाने के बहाने कि चलो आपको चौराहे पर हम घुमा लाएं, और बस वो हम लेकर चले गए थे बगिया और वहाँ पर पूजा पाठ कराया और हमारे चंदन लगाए और अंगूठे में भी कुछ लगाया। फिर हंसराज ने कहा कि आज मुहूर्त निकल गया, इसलिए बलि इसकी आज नहीं होगी, इसकी बलि परिवार को दी जाएगी।
लड़के के साथ हुई इस घटना के बाद परिवार वाले काफी डरे हुए हैं। परिवार वालों ने बच्चे का स्कूल जाना छुड़वा दिया है तो दूसरी ओर गांव और परिवार के लोग बच्चे की लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि उसके साथ कोई अनहोनी न होने पाए। बच्चे के पिता का कहना है,
हमारे बच्चे के साथ हमारे बड़े भाई के दामाद हैं उनके छोटे वाले भाई भागीरथ वो लोग आए थे बहाने समय लड़के को बुला के लेके चले गए। कोई किसी बाबा ने कहा था कि इसकी बलि चढ़ा दो, जिस लड़के पर कोई अनहोनी वाली बात हो जैसे कि 24 उंगलियां हो या उल्टा पैदा हुआ हो ऐसा कुछ। अब हमारे घर की लड़की थी उसने बता दिया उन लोगों को, इस बहाने से वो लोग आए और उनको लेके चले गए। गए वहां राम सागर के बाग में पूजा पाठ करवाया, लड़का बताने लगा कि पूरी उंगलियों में सब निशान लगवाए, 8 आदमियों के बीच में पूजा करवाया। वहां पंडित ने बताया कि आज शुक्रवार है, बृहस्पतिवार को बलि चढ़ाएंगे तब माया निकलेगी। फिर उसी मुहूर्त पूजे से नहीं चढ़वाए, फिर इनको छोड़ गए यहाँ डरवा धमका के, कहे थे कि बताओगे तो मार देंगे जान से।
बच्चे के पिता राज मिस्त्री का काम करते हैं। इन लोगों ने इस बारे में पुलिस से शिकायत की है। हालांकि जिनके बारे में शक जाहिर किया जा रहा है उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन गाँव के कुछ लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं रामनगर के पुलिस उपाधीक्षक उमाशंकर सिंह का कहना है कि उनके संज्ञान में जैसे ही ये बात आई उन्होंने परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
यह प्रकरण अभी अभी मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसकी निष्पक्ष जांच करूंगा तथा इसकी कार्रवाई करूंगा तथा इसे शिक्षा से वंचित नहीं होने दूंगा।
परिवार को पुलिस का सहारा और आश्वासन भले ही मिल गया है लेकिन अभी तक किसी तरह की औपचारिक सुरक्षा उन्हें नहीं मिली है। बहरहाल परिवार के लोग डर के साए में भी बच्चे की निगरानी 24 घंटे कर रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब अखबारों की समीक्षा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है भूमिका राय। क्या कहते हैं आज दिल्ली से छपे अखबार भूमिका?
जी आदर्श, आज के अखबारों में सबसे बड़ी जो खबर है और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपने पहले पन्ने पे एक तस्वीर छापी है जिसमें कुछ लोग हैं जो मोमबत्ती लेके जा रहे हैं, उनकी सूरत जो है उनकी जो शक्ल है वो बहुत साफ नहीं दिखाई दे रही है लेकिन उनके हाथों में जो मोमबत्तियाँ हैं वो ये बता रही हैं कि वो एक किसी प्रदर्शन में जा रहे हैं। और ये प्रदर्शन कोची में नन के साथ कथित रेप की घटना के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ है उसकी है। और ये प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं ये कथित आरोपी बिशप फ्रांको मुलक्कन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और ये मामला कल से ही सारे अखबारों में, सारे न्यूज़ वेबसाइट्स पे सुर्खियों में बना हुआ है। और हमने अभी इस पे रिपोर्ट भी सुनाई जिसमें विस्तार से हमने दोनों पक्षों की बात रखी। और उसके बाद एक खबर है चुन चुन कर निकालेंगे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BJP के अमित शाह जी, वो कह रहे हैं। और उन्होंने कल जयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत में जो भी बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं वो एक एक करके उन्हें वापस भेज देंगे। और ये पार्टी को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी चुनाव से भी जुड़े बहुत से बातें कहीं जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी की जीत हर हाल में सुनिश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो हो सकता है विपक्ष मोहम्मद अखलाक का मुद्दा उछाले या फिर अवार्ड वापसी वाला मुद्दा जो है वो लेकर के आए, लेकिन बावजूद उसके भाजपा ही जीतेगी जी। और ये अखलाक वही हैं जिन्हें कथित तौर पर बीफ खाने के शक में मार दिया गया था। और इसके अलावा अखबार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर से जुड़ा एक बयान प्रकाशित किया है जिसमें रघुराम राजन ने लिखा है कि उन्होंने बहुत से बैंक से जुड़े बहुत बड़े बड़े घोटालों की जो एक लिस्ट थी वो प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी थी। हालांकि अभी उस लिस्ट पे क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ है इसके बारे में उन्होंने पूरी तरह अनभिज्ञता जताई है।
यानी इंडियन एक्सप्रेस पे खबर
जी जी बिल्कुल। और आपके भी पास अखबार है
जी, हाँ, इसमें द हिंदू में ये एक खबर है जो कि इसमें लिखा है वी वुड हैव डिफरेंट लाइन। महिंद्रा राजपक्षे जो कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि जो तमिलनाडु ने राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की सिफारिश की है अगर वो वहां पे होते उनकी जगह तो शायद उन्होंने ऐसा ना किया होता, ये उनका कहना है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया भूमिका। रुबाब ये नाम है सरोद की तरह दिखने वाले एक साज का जो पाकिस्तान के कबायली इलाके पाराचिनार में सूफी संगीत का एक अहम हिस्सा होता था, लेकिन चरमपंथी हिंसा ने इस साज के भविष्य को भी खतरे में डाल दिया है। हालांकि कुछ लोग इसके बावजूद वहां इस साज और संगीत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए पाराचिनार से BBC संवाददाता फरहत जावेद की रिपोर्ट।
नईम आजिज पाराचिनार के चंद मशहूर रुबाब नवाजों में से एक हैं। वो आबादी से दूर खामोश पहाड़ों के दामन में ये फन नई नस्ल में मुंतकिल कर रहे हैं।
पाराचिनार में रबाब का तसव्वुफ में बहुत अहम हिस्सा है, इसी वजह से
تصوف کے لوگ رباب سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ادھر سہولت نہیں ہے، اگر سہولت نہیں ہے تو پھر مستقبل نہیں ہے، اگر مستقبل نہیں ہے تو پھر بچے کیوں آئیں گے اس فیلڈ کو۔
رباب، طبلہ، شہنائی کبھی اس علاقے کی پہچان تھے، اب بھی یہاں انہیں سیکھنے والے نوجوان تو بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان کے پاس آگے بڑھنے کے مواقع نہیں۔
پاکستان کے دیگر قبائلی علاقوں کے مقابلے میں ضلع کرم میں صدیوں تک موسیقی اور ادب کو نہایت اہم مقام حاصل رہا، لیکن فرقہ واریت اور دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ بھی یہی ہے۔ فوجی آپریشن کے بعد یہاں محصور علاقے تو آزاد کرا لیے گئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ موسیقی اب بھی انتہا پسندی کی قید میں ہے۔
پارا چنار کے مرکزی بازار کے اس چھوٹے سے کمرے میں صرف دن کے مصروف اوقات میں ہی موسیقی کی جا سکتی ہے، لیکن جواز علی جیسے نوجوانوں کا یہ میوزک گروپ خطرے سے دو چار موسیقی کی رکھوالی کر رہا ہے۔
یہ وہ چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں میں سنگیت سیکھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں اور میں یہ کرتا رہوں گا، پر اس کمرے کے باہر موجود لوگوں میں سے آدھے سنگیت سے رابطہ رکھتے ہیں اور آدھے نہیں۔ یہاں شانتی نہیں ہے۔
مواقع نہ ہونے کے باوجود پارا چنار کے دور دراز دیہاتوں میں اب بھی رباب کی دھنیں نجی محفلوں میں سنائی دیتی ہیں، اور اس موسیقی پر جھومنے والوں میں نوجوان بھی ہیں اور بزرگ بھی۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، پارا چنار۔
اور اب کھیل سماچار۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں اندو پانڈے۔ یو ایس اوپن ختم ہونے کے بعد اوساکا اور نوواک جوکووچ دونوں کی ہی رینکنگ میں سدھار ہوا ہے۔ سوموار کو جاری تازہ اے ٹی پی رینکنگ میں نوواک جوکووچ تیسرے نمبر پہ پہنچ گئے ہیں، تو وہیں مہیلاؤں کی رینکنگ میں اوساکا پہلی بار ٹاپ 10 میں جگہ بنا پائی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اوساکا پچھلے 22 سال میں ٹاپ 10 میں پہنچنے والی جاپان کی پہلی مہیلا کھلاڑی بن گئی ہیں، تو رینکنگ میں اس وقت وہ 7ویں نمبر پر ہیں۔ اور دوسری طرف جاپان کی کی نشیکاری نے ٹاپ 20 میں سب سے بڑی چھلانگ لگائی ہے، وہ 7 ستھان کا سدھار کرتے ہوئے 12ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں ISSF ورلڈ چیمپئن شپ کی، جس میں سینئر کے بعد جونیئر شوٹرز نے بھی اپنا کمال کا پردرشن دکھایا ہے۔ بھارت کی جونیئر پرشز کی ٹیم نے ISSF وشو چیمپئن شپ میں سلور، جبکہ اسی ایونٹ میں گرنہال سنگھ گارچا نے منگلوار کو برونز میڈل جیتا۔ سوموار کو پہلے دن کے کوالیفائنگ مقابلے کے بعد بھارتی ٹیم ٹاپ پر چل رہی تھی۔ 19 سال کے گرنہال نے 6 نشانے بازوں کے ویکتیگت فائنل میں بھی جگہ بنائی اور 46 انک کے ساتھ برونز میڈل لیا ہے۔ دوسری طرف جونیئر مہیلا 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن میں بھارتی ٹیم 3383 انک کے ساتھ 14ویں نمبر پر ہے۔ بھارتی ٹیم میں شامل بھکتی کھامکر، شیرین گودار اور آیوشی پوڈیر ویکتیگت فائنل میں جگہ بنانے میں وفل رہے۔ سینئر نشانے باز کا نراشا جنک پردرشن حالانکہ جاری رہا، جب مہیلا کی ٹیم 319 انک لے کر کے 9ویں ستھان پر رہی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی انجم مودرل اور اپوروی چندیلا ہی اس پرتیوگتا سے مہیلا 10 میٹر ایئر رائفل اسپردھا میں اولمپک کوٹا حاصل کرنے میں سفل رہیں۔ اور کرکٹ میں ایشیا کپ کا آغاز 15 ستمبر سے ہونے جا رہا ہے۔ ایشیا کے اس مہاکمبھ میں 5 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں بھارت، پاکستان، شری لنکا، بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ شامل ہے۔ اور اس بار بھی ایشیا کپ 50-50 اوور کے فارمیٹ میں کھیلا جائے گا، اور اس ٹورنامنٹ میں بھارت کے نیمت کپتان ویراٹ کوہلی کو آرام دیا گیا ہے۔ ویراٹ کی غیر موجودگی میں روہت شرما ٹیم کی کمان سنبھالیں گے، تو ٹورنامنٹ کا پہلا میچ 15 ستمبر کو بنگلہ دیش اور شری لنکا کے بیچ کھیلا جائے گا، حالانکہ بھارت کا پہلا میچ 18 ستمبر کو ہانگ کانگ کے ساتھ ہوگا۔
اور ویزا لینے سے پہلے مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔
امریکہ میں چکروات فلورنس کے خطرے کے کارن بڑے پیمانے پر لوگوں کو سرکشت استھانوں پر پہنچایا جا رہا ہے۔ کل بھارتی کرکٹ ٹیم کو اوول ٹیسٹ میں 118 رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی انگلینڈ نے سیریز 4-1 سے اپنے نام کر لی۔ जिम्बाब्वे की सरकार ने हैजा की वजह से हुई 20 लोगों की मौत के बाद राजधानी हरारे में आपातकाल की घोषणा कर दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।